તારીખ 31/7/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 147
પરંતુ એક એક પોસ્ટ કાર્ડ લેકર કે 8 પોસ્ટ કાર્ડ મેં લિખા का विषय तो बहुत सुंदर है, प्रयोजन भी है, परंतु इतना लंबा पत्र लिफाफे में नहीं लिख करके पोस्ट कार्ड में क्यों लिखा? 8-8 पोस्ट कार्ड तक ये पत्र चला, क्या सूचित करता है? ये पत्र लिखने का कोई प्री प्लान नहीं था। अगर शुरू से ही इतना लंबा चौड़ा लिखने का दिमाग में कोई बात होती तो पूरा लिफाफा लिखते, लेकिन एक पोस्टकार्ड लिखा, उदय भाव चालू रहा लिखने का, दूसरा लिखा, फिर भी उदय भाव चालू रहा, तीसरा लिखा। पहले पोस्टकार्ड लिखते वक्त दूसरे का विकल्प नहीं था, दूसरे को लिखते वक्त तीसरे का विकल्प नहीं था। इसके पीछे यही कहेंगे, यही लिखेंगे, वो बात आगे से सोच करके नहीं लिखते। सहज विकल्प आया, सहज विकल्प चला, लिख दिया सो लिख दिया, रह गया सो रह गया। कभी दो शब्द लिख करके पूरा कर देते हैं पोस्ट कार्ड, दो वाक्य में भी पूरा कर देते हैं, तो कभी 8-8 पोस्ट कार्ड चालू रहता है। इसमें है ज्ञान दशा में जो सहजता है, वो सहजता का हमको दर्शन होता है। कैसी सहजता है? विकल्प चला तो चला, हम विकल्प के साथ नहीं चले। लिखा है ऐसा, आखिर में लिखते हैं कि आज यह 8वां पत्ता लिख रहे हैं, पत्ता मैंने पोस्ट कार्ड, चित्र ऐसा उदय वाला कभी वर्तता है, चित्र ऐसा उदय वाला कभी वर्तता है। कौन वर्तता है? चित्त वर्तता है, हम उदय वाले नहीं वर्तते। चित्त ऐसा कभी वर्त जाता है तो वर्त जाता है, हम रोकते नहीं, और नहीं वर्तता तो हम चलाते नहीं कि तुम आगे चलो। चित्त ऐसा उदय वाला कभी वर्तता है, आज ऐसा अनुक्रम से उदय होने से, आज ऐसा अनुक्रम से उदय होने से, उदय के अनुसार लिखा है। एक उदय चल गया लिख दिया, उदय के अनुसार लिखा गया तो लिखा गया। ये वचन क्या सूचित करता है? ज्ञान दशा में कितनी सहजता थी, कोई बोझा नहीं। हृदय भाव चलो तो अपने आप चलो, बंद हो जाओ तो अपने आप बंद हो जाओ। हम विकल्प के करता फरता नहीं है। समय सार बोलता है ना, वो बात है, समय सार में वो बात चलती है। ज्ञानी अपने विकल्प का करता फरता नहीं होता, रागादि का करता भोक्ता नहीं होता। ऐसी दशा शायद यहाँ भी लिखने में आती है। पत्र जिसको लिखा है ये कृष्णदास भाई करके, संभाग के बहुत अच्छी योग्यता वाले मुमुक्षु थे, इसलिए विकल्प भी ऐसा चल गया। योग्यता अच्छी थी तो पत्र में विषय भी अच्छा चला है, तो संबोधन ऐसा किया है कि वैराग्य आदि साधन संपन्न भाई कृष्णदास संवाद। कैसे थे कृष्णदास भाई? कि वैराग्य आदि साधन संपन्न थे। हमारे यहाँ तो सब प्रकार की अनुकूलता होती है, उसको साधन संपन्न कहते हैं। दिनचर्या के सभी कार्य अनुकूलता से संपन्न हो, ऐसे साधन हो तो कहते हैं कि साधन संपन्न। कृष्णदास भाई वैराग्य आदि साधन संपन्न थे। मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य था, सरलता थी, भक्ति आदि ऐसे साधन थे जो संपन्न थे। शुद्ध चित्त से विदित आपकी विज्ञप्ति पहुंची है। मैंने कुछ विनंती किया है कृपालु देव को कि हमको आपकी ओर से कोई हमारे योग्य ज्ञान वार्ता या उपदेश ऐसे कोई विज्ञप्ति किया होगा। कृपालु देव ने इस विनंती में विनंती करने वाले का अंतकरण को देखा है। शुद्ध अंतकरण से उन्होंने मांग किया है, विनंती किया है। लिखते हैं कि आपकी जो विनंती है उसमें वाकई ही आपको आत्म कल्याण करना है, ऐसा शुद्ध अंतकरण दिखता है। जो शुद्धांतकरण से किसी ने कुछ प्रयोजनभूत ज्ञान वार्ता का विनंती किया है तो उदय ऐसा चल गया, आठ आठ पुरस्कार दिखा गया। मैंने ज्ञानी पुरुष को सहज ही उदय भाव में ऐसा आता है कि अगर कोई योग्यता वाला मुमुक्षु दिखता है तो सहज ही उसको अधिक रिस्पॉन्स देते हैं। ये सहज ज्ञानी और सुपात्र जीव के बीच में सहज ऐसा ही प्रकार बनता है। योग्यता अच्छी होती है, यानी कुछ मुमुक्षु की भूमिका के गुण दिखते थे, दिखने में आते हैं। तो ज्ञानी तो गुण के पुजारी है। क्या है ज्ञानी? इसे कहें कि जो गुण के पुजारी हो। गुण दिखेंगे तो इसकी पूजा करेंगे। देखो नहीं सुभाष भाई के विषय में कितना लिखते हैं, कि हमको तो आपका सत्संग चाहिए और आपके चरण प्रति हमारा नमस्कार है, ऐसा लिखा है। इन्हीं दिनों में लिखा है, 2400 साल के में लिखा है, 453 है। चार सौ त्रिपन में लिखते हैं। क्या लिखे और क्या कहें, एक आत्मवार्ता में ही अविच्छिन्न काल वर्तता रहे, ऐसा तुम्हारे जैसे पुरुष का सत्संग के हम दास हैं। क्या लिखा, क्या क्या लिखे आपको, इतने गुणवान थे सुभाग भाई, वाकई सुभाग भाई थे, इतने भाग्यवान थे कि जिसके प्रति ऐसे शब्द निकले हैं, तो सौभाग्य तो सौभाग्य ही है। क्या लिखे और क्या कहें, कितना भाव आया है, एक आत्मवार्ता में ही अविच्छिन्न काल वर्तता रहे, ऐसा तुम्हारे जैसे पुरुष का सत्संग का हम दास हैं। अत्यंत विनय बने, अत्यंत विनय रूप से हमारा चरण प्रत्ययी नमस्कार स्वीकार करिए, यही विनंती। दासानुदास रायचंद का प्रणाम वंचना, ऐसा लिखा है। क्या सूचित करता है कि ज्ञानी गुण के पुजारी है, गुण दिखेंगे तो इसकी पूजा करने लगेंगे। देखो प्रत्यक्ष पुरावा है, ये कोई शायद बात बनी है तो दिखने में स्पष्ट आती है कि नहीं आती है।
वर्तमान अज्ञान दशा को भ्रम करते हैं, वर्तमान अज्ञान दशा को भ्रम करके पूजा करते हैं।
ये अज्ञान दशा नहीं है, इस भूमिका की ये ज्ञान दशा है। अज्ञान दशा को कोई नमस्कार नहीं करेंगे, दोष को कोई नमस्कार नहीं करेंगे, गुण को नमस्कार करेंगे, इस भूमिका की ये ज्ञान दशा है। ऐसी बात है, जो दशा, जो मुमुक्षु की दशा ज्ञान दशा के कारणभूत होती है, ऐसी मुमुक्षु दशा भी कारण में कार्य का उपचार करके ज्ञान दशा बोली जाती है। जो मुमुक्षु की दशा आत्मज्ञान के कारणभूत होती है, ऐसी मुमुक्षु दशा को आत्मज्ञान बोला जाता है। और जो मुमुक्षु दशा सम्यक दर्शन के कारणभूत होती है, ऐसी मुमुक्षु की दशा को उस दशा का सम्यक दर्शन बोला जाता है। तो बहुत कम लोगों को पता है इस बात का, शास्त्र पढ़ने से ऐसी बात नहीं समझ में आएगी। 751 का नाम पत्र बोलता है, पहला संकेत दूसरा संकेत क्या बोला, तो सम्यक दर्शन के पहले की दशा को ही संकेत क्यों बोला। जब सम्यक दर्शन के कारणभूत दशा को सम्यक दर्शन बोला जाता है, तो आत्मज्ञान के कारणभूत दशा को आत्मज्ञान बोला जाता है। तो ज्ञान दशा के कारण दशा को ज्ञान दशा बोली जाती है, इसमें क्या आपत्ति है? अगर ऐसा बहुमान नहीं आया तो हमें वास्तविक रूप से ज्ञानी का और ज्ञान दशा का बहुमान नहीं है, लोक संज्ञा से हम चलते हैं, कोई हमारी समझदारी नहीं है इस विषय में। ये बात रही समझदारी की,
सबकी परीक्षा हो जाती
है। हाँ, पोल नहीं चलेगी। ज्ञान दशा की अच्छी अच्छी बात करने से, बातों से कोई पेट भरने वाला नहीं है। माल तो दिखेगा, इसलिए कहते हैं कि शुद्धांतकरण से विदित की आपकी जो विज्ञप्ति है वो हमको पहुंची है। अब कहते हैं कि सर्व परमार्थ के साधन में परम साधन तो सत्संग है। यहां से पत्र शुरू किया है, कैसे किया है? आत्मकल्याण के जितने साधन बोले जाते हैं, यम नियम संयम शास्त्र ज्ञान आदि, उसमें परम साधन उत्कृष्ट साधन अच्छे से अच्छा साधन तो सत्संग है। सत्पुरुष के चरण समीप का निवास है। सत्संग माने क्या? अल्प विराम करके इतना लिख दिया है कि सर्व परमार्थ के साधन में परम साधन वह सत्संग है जो सत्पुरुष के चरण समीप का निवास है। जो सत्पुरुष के संग में रहना चाहते हैं और चरण में रहना चाहता है, संग में रहना और माथे पे बैठना वो बात नहीं है, चरण में रहना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है? आज्ञा का अमलीकरण करना चाहता है, सुन ले और कुछ करे नहीं, उसके संग को संग कैसे कहा जाएगा? उसके संग को संग कहना ही बेकार है। पर वास्तव में वो संग बेकार गया, इसलिए उसको बेकार कहे तो बात उचित ही है, सही है। सर्वकाल में इसका दुर्लभपना है, ज्ञानी पुरुष का संग मिलना ये तो सर्वकाल में दुर्लभ है, और ऐसे विषम काल में सत्संग का, ऐसे सत्संग का अत्यंत दुर्लभपना ज्ञानी पुरुषों ने जाना है। इस काल में तो सत्संग मिलना, परम सत्संग मिलना ये तो बहुत दुर्लभ है, ऐसा सभी ज्ञानियों ने जाना है। ऐसा कहकर के सत्संग का मूल्यांकन कराया है। संसार में भी, जगत में जिस चीज की कमी होती है उसका मूल्य ज्यादा होता है। लोहे से सोने का मूल्य ज्यादा है, क्योंकि लोहा टन में गलता है जबकि सोना तोले में गलता है। गलन करते गर्म करके, और हीरा कैरेट में तोला जाता है, ग्राम में भी नहीं। कारण क्या है? इतना कम पैमाने में वो मिलता है, ज्यादा मिलता नहीं है। ऐसे अपने यहाँ प्रैक्टिकली देखो तो कंसल्टेशन का चार्ज सबसे ज्यादा है, चाहे टेक्निकल कंसल्टेशन हो चाहे इकोनॉमिकल कंसल्टेशन हो। इसमें भी इकोनॉमिकल कंसल्टेशन का सबसे ज्यादा चार्ज है। क्यों के सारे विश्व में हो सकता है 20 से 25 इकोनॉमिस्ट ऐसा मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ नानी पालकी वाला वगैरह हैं, कि जिसका मिनट मिनट के पैसा हजारों रुपया लगता है, एक घंटे का 25,000 50,000, एक घंटे के 10 मिनट हुआ फ्रैक्शन ऑफ देवर दूसरा 50,000, दो घंटे का लग जाएगा। इसका कंसंट्रेशन चला एक घंटा और आपने फिनिश नहीं किया कि नहीं और भी हमको और दो बात पूछनी है, 10 मिनट लगा तो दो घंटे का चार्ज लग जाएगा। हो सकता है कि विश्व में ऐसा इकोनॉमिस्ट 20-25 मिल सकता है, ज्ञानी 20-25 नहीं मिल सकता है विश्व में। आज वो काल में है कि 20-25 ज्ञानी मिल जाए, कोई एक दो मिल सकता है। इसलिए सत्संग का मूल्य बहुत है। शेषनो पुत्र अभी अभी हम लोगों ने स्वाध्याय किया तो क्या लिखा था उसमें कि देह त्याग करने का प्रसंग मिले तो कर लेना, लेकिन सत्संग को गौण नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्संग का मूल्य पैसों में तो नहीं मूल्य किया जाता, किंतु प्राण त्याग से प्राण से भी अधिक इसका मूल्य है। क्या हमारे प्राण से भी अधिक इसका मूल्य आएगा तब सत्संग का फायदा होगा, क्योंकि ये प्राण पुद्गल प्राण है। आयुष्य और श्वासोश्वास वाला जो प्राण है वो तो पुद्गल की पर्याय है, जीव की नहीं है। जबकि सत्संग है तो चैतन्य प्राण मिलता है। सत्संग से क्या मिलता है? चैतन्य प्राण की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका मूल्य ज्यादा है। और ऐसी चेतना अनादि से जो सुसुप्त है, ऐसी चेतना जागृत हो जाए तो अनंत काल का निवेड़ा हो जाए, इसलिए इसका मूल्य बहुत बड़ा है। तो सभी ज्ञानी पुरुषों ने ऐसा जाना है, सत्संग इतना मूल्यवान है, ये ज्ञानी पुरुषों का अभिप्राय है। इस सर्व काल में वो दुर्लभ है तो इस काल में तो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। अब ज्ञान दशा की बात करते हैं कि ज्ञानी पुरुषों की प्रवृत्ति जैसी नहीं होती। ज्ञानी पुरुषों की जो प्रवृत्ति होती है वो तो दूसरे लोग प्रवृत्ति करते हैं ऐसी दिखती है तो भी वो ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, बहुत फर्क है। जैसे खुद ही व्यवसाय में बैठे थे, मुंबई से तो पत्र लिख रहे हैं, 26 साल की उम्र है जब ये पत्र लिख रहे हैं, 26 साल की युवान अवस्था है शरीर की। इस वक्त तो आत्मा ज्ञान वृद्ध था, क्या ज्ञान वृद्ध था आत्मा में। जैसे वृद्ध आदमी मैच्योर्ड होता है, जल्दी से बोलेंगे नहीं, फेंकेंगे ना, सोच समझ के पूरी बात बोलेंगे, ऐसे मैच्योरिटी उतनी थी। छोटी उम्र में। ज्ञानी पुरुषों की प्रवृत्ति प्रवृत्ति जैसी नहीं होती, जैसे गर्म पानी में अग्निपने का मुख्य गुण कह सकते नहीं। पानी कितना भी गर्म हो, उफान आता हो, उकलतू पानी जाने अपने प्रिय, तो गांव को जलाएगा नहीं। एक चिंगारी होती है तो सारे गांव को जलाएगी, लेकिन बहुत गर्म पानी भी आग नहीं लगाएगा। पानी कितना भी गर्म हो, इससे आग नहीं लगती, क्योंकि अग्निपना का गुण उसमें नहीं है। गर्म गर्मी है, अग्नि भी गर्म है और पानी भी गर्म है, फिर भी दोनों के गुण में फर्क है। कितना भी पानी गर्म हो, आग नहीं लग सकती। आग तो नहीं लग सकती, लेकिन वो गर्म पानी से आग बुझ सकती है, क्योंकि आखिर में वो पानी है। पानी है वो पानी है, अग्नि नहीं है। गर्म पानी में जैसे अग्निपना का मुख्य गुण नहीं कहा जाता, वैसे ज्ञानी की प्रवृत्ति है, वैसे ज्ञानी की प्रवृत्ति है। दूसरे की प्रवृत्ति आत्मा को जलाएगी, ज्ञानी की प्रवृत्ति से आत्मा में आग नहीं लगेगी। ज्ञानी की आत्मा में शांति बनी रहेगी, प्रवृत्ति करेंगे लेकिन शांति बनी रहेगी। हाँ, मुख्य गुण बने स्वभाव। अग्नि का स्वभाव गर्म है, पानी का स्वभाव भी गर्म है, फिर भी ऐसा स्वभाव पानी में नहीं बोला जाता। गर्म पानी की बात चल रही है। गर्म पानी में जैसे अग्निपना का मुख्य गुण नहीं कहा जा सकता, गर्म पानी की बात चल रही है, ठंडा पानी की नहीं चल रही है। वैसे ज्ञानी की प्रवृत्ति है, दूसरे जीवों की प्रवृत्ति विषय कषाय में आग्नि आत्मा को जलाएगी, आत्मगुण को खत्म करेगी, ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं करेगी, वो तो आत्मगुण को जलाने वाली नहीं है। जलाने वाली तो नहीं है, आत्मगुण को विशेष रूप से आविर्भाव करने वाली है, और वही करके दिखाया है। ये बात सिद्ध करके कृपालु देव ने दिखाया है कि प्रवृत्ति में भी विशेष निर्जरा की है। एक जगह तो लिखते हैं कि कोई ज्ञानी निवृत्ति में निर्जरा करें, इससे ज्यादा निर्जरा हमने प्रवृत्ति में किया है। एक विशेष ज्ञान कला थी उनके पास, जिससे वो प्रवृत्ति में भी ज्यादा निर्जरा कर सकते थे और करी भी।
10 साल में अनंत भोग काटा है।
हाँ,
10 साल में अनंत भोग खत्म कर दिया,
अनंत भाव के कर्म को खत्म किया। 10 साल जैसे साधक दशा के पीरियड में बहुत भावों के कर्म को खत्म कर दिया, बहुत स्तुति पात्र दशा है, उसकी स्तुति करनी चाहिए। और ऐसे ज्ञानी पुरुषों की दशा की स्तुति होना, ये मुमुक्षु दशा के स्वाध्याय का अंग है। ऐसा नहीं कभी लेना कि ज्ञान दशा की बात चलती है, हमें लेना देना नहीं है, हमारी तो मुमुक्ष दशा है, इसलिए हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा कभी मत लेना। ज्ञान दशा की बातें आती हैं तो ज्ञानी पर विशेष रूप से बहुमान होता है, भक्ति होती है, विनय आदि गुण प्राप्त होता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा वो है कि दर्शन मोह का अनुभाग टूटता है। स्वाध्याय में ज्ञानी की दशा की महिमा आती है, इसका गुणगान होता है, ज्ञानी के गुणों का गान होता है, इसको गुणगान कहते हैं, और सुनने वाले और सुनाने वाले को अविरोध भाव पैदा होता है, विशेष भक्ति संपन्नता होती है, दर्शन का अनुवाद करता है, और वही प्रयोजन है मोक्ष का। तथापि ऐसी ज्ञानी की प्रवृत्ति है गर्म पानी जैसे, तथापि फिर भी ऐसा नहीं है कि ज्ञानी प्रवृत्ति को चाहते हैं, तथापि ज्ञानी पुरुष भी ज्ञानी निवृत्ति को किसी भी प्रकार से भी चाहते हैं, किसी भी प्रकार से हमें निवृत्ति मिल जाए ऐसा वो भी चाहते हैं, तो फिर अपना जो पुरुषार्थ है उसका प्रयोग करके उसी वक्त वो ज्यादा निद्रा करके इस उदय का लाभ उठाते हैं, और ऐसा लाभ उठाने की कला उनके पास है तो ऐसा करते हैं। पूर्व आराधन किए हुए निवृत्ति के क्षेत्र, अब खुद को जाति स्मरण है ना, इसलिए लिखते हैं कि पूर्व भव में आराधन किए ऐसे निवृत्ति के क्षेत्र हैं, वन उपवन है, विडर में जाते थे ना पूर्व भव, योग में सत्समागम, समाधि, ज्ञान दशा की प्राप्ति आराधन किया है, और सत्संग आदि ज्ञानी पुरुष को प्रवृत्ति में बैठे बैठे बार बार स्मरण में आता रहता है कि अरे ये कहाँ प्रवृत्ति, और अगले भव में हमको कैसी निवृत्ति थी, कैसे सत्संग करते थे, कैसे हमको आत्म समाधि चलती थी, वो वन उपवन जंगल में चले जाते थे, निवृत्ति क्षेत्र में रह जाते थे, और हमारा आत्म साधन करते रहते थे, ये वो निवृत्ति का काल कहाँ और ये प्रवृत्ति का काल कहाँ। जैसे कोई बैलगाड़ी का बेल जो बोझा नहीं उठा सके, उस बैलगाड़ी को चीटी कैसे खींचेगी, हाँ चीटी मैंने कीड़ी, जो बेल जिसका बोझा नहीं उठा सकता, खींच सकता नहीं, उस बैलगाड़ी को चीटी कैसे खींचेगी, जाने को इतना बोझा लगता है, अरे ये बोझा उठाना हमारे लायक नहीं, फिर भी उठा लेते हैं। प्रारब्ध है, क्या करें, हेर फेर करने का तो किसी का अधिकार है ही नहीं। जब हम होने चाहिए तो वैसा लिखा ही है कि पूर्व में आराधन किए हुए ऐसे निवृत्ति के क्षेत्र वन उपवन लिखा है, योग योग साधना किया है, ध्यान समाधि और सत्संग आदि, ज्ञानी पुरुष को मैंने हमको
प्रवृत्ति में बैठे बैठे बार बार स्मरण में आता रहता है, क्या करें, इसका स्मरण होता है। तथापि उदय प्राप्त प्रारब्ध को ज्ञानी अनुसरण करते हैं, फिर भी उदय प्राप्त प्रारब्ध को अनुसरण करना पड़ता है, करते हैं मतलब करना पड़ता है तो कर लेते हैं। वहां भी सत्संग की रुचि रहती है, ऐसी प्रवृत्ति में भी प्रारब्ध को अनुसरण करते करते भी सत्संग की रुचि तो ज्ञानी को भी रहती है और उसका लक्ष्य रहता है, और सत्संग का लक्ष्य रहता है। परंतु यह इस वक्त नियमित नहीं है, सत्संग नियमित नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, अनियमित रूप से सत्संग होता रहता है। ये वर्तमान परिस्थिति खुद की है, ऐसा एक पुरस्कार यहां पूरा होता है, अब दूसरे पुरस्कार को वो लिखते हैं कि कल्याण में प्रतिबंध रूप जो जो कारण है, आत्म कल्याण में प्रतिबंध रूप जो जो कारण है, पहला पुरस्कार यहां पूरा होता है, प्राइमर होता है। आत्म कल्याण में प्रतिबंध रूप जो जो कारण है, वे कारण का जीव को बार बार विचार करना चाहिए। क्या कहते हैं, मुमुक्षु जीव को अपने आत्मकल्याण में अवरोध होने वाले, प्रतिबंध रूप होने वाले हैं, रुकावट करने वाले हैं, ऑब्स्टेकल्स, उनका विचार अवश्य अवश्य करना चाहिए। तो मेरा आत्मकल्याण नहीं हो रहा है तो मेरा कौन सा ऐसे भाव है, मेरे ऐसे कौन से भाव है जो मुझे आत्मकल्याण में अवरोध कर रहे हैं, प्रतिबंध कर रहे हैं, इसका अवश्य विचार करना चाहिए। इसको गौण नहीं करना चाहिए, आंख नहीं बीचना, अपने गुजराती में आंख आडा कान के कोई बात ठीक नहीं हो, समझ में आ गई कि ये ठीक नहीं है, फिर भी चला लो, गौण करके चलाओ, आगे चलो, ये आंख आडा कान। आत्मकल्याण के विषय में ऐसा मत करिए, मुमुक्षु जीव को तो अपने आत्मकल्याण में जो अवरोध है, ऐसे भावों का, ऐसे कारणों का अच्छी तरह विचार करना चाहिए, और वे कारणों को बारंबार विचार करके मिटाना चाहिए, विचार करके मिटाने का भी प्रयास करना चाहिए, तो मिटेगा, उसको मिटाना चाहिए। हमको मालूम हुआ कि हमको समाज प्रतिबंध है, या कुटुंब प्रतिबंध है, या शरीर प्रतिबंध है, तो मालूम हुआ उतना ही पर्याप्त नहीं है, उसका हम कितनी गहराई से, कितनी गंभीरता से विचार करते हैं और मिटाने का कौन सा हमारा प्रयास चलता है। ये बात हमको अच्छी तरह देखनी चाहिए और हमारी समझ में बात होनी चाहिए। बल नहीं उठने का कारण है कि हमारे पास बल तो है, लेकिन वो बल गलत जगह खर्च हो रहा है। प्रयोजनभूत विषय में कार्य करने का संगनी प्राणी को बल होता ही है, और हम तो संगनी नहीं है, संगनी मनुष्य है। संगनी त्रियंच भी होते हैं, संगनी नारकी हैं, संगनी देव है, लेकिन संगनी मनुष्य को सबसे ज्यादा कार्य करने का मौका है, सबलियत है। तो हमारा बल गलत जगह पे खर्च हो रहा है, ये बात हमको देखना है। सिर्फ बल का डायवर्जन करना है, बल नहीं है तो बात नहीं है, बल तो है ही हमारे पास, लेकिन इसका और जगह प्रयोग हो रहा है, वो प्रयोग नहीं करके इसको सही जगह लगा दे तो काम हो जाएगा।
मन ज्ञान का उपयोग लेना वर्तमान, मन माने वर्तमान ज्ञान का उपयोग लेना है,
नहीं विधि का परिणाम है। बल मैंने पुरुषार्थ, विधि मैंने विधि गुण का परिणाम है। तो ऐसा विधि का सूक्ष्म है, सभी संघनी जीवों को विवेका सूक्ष्म आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त मात्रा में है, अधूरा नहीं है, पूर्णता है। तो हमारे पास नहीं है सो बात नहीं है, हम गलत जगह उसका प्रयोग करते हैं, इस बात है।
गलत जगह मैंने प्रसन्नमुक्ता हुई है, गलत जगह प्रयोग हो रहा है मतलब प्रसन्नमुक्ता हुई है।
प्रसन्नमुक्ता क्या है, हम पर में लगा रहे हैं, राग बल है, मोह बल है, और जो भी हमारे प्रतिबंध है उसमें हमारा बल चला जाता है, नुकसान में उसका प्रयोग हो रहा है। व्यापक तो चलता ही है विधि गुण का, लेकिन नुकसानी का वो बात है। पर सन्मुखता भी है, अनेक प्रकार के दोष है, उसके साथ बल भी है। विरुद्ध श्रद्धा है, मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या आग्रह है, तो उसके साथ भी बल होता है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते ये होता है, आत्मा अपरिणामी है तो हम नहीं मानेंगे, ये क्या है, विरुद्ध बल है, मिथ्या का बल है, अज्ञान का बल है। अज्ञान के साथ अज्ञान का बल रहता है, मिथ्यात्व के साथ मिथ्यात् का बल रहता है, सम्यक दर्शन के साथ और सम्यक ज्ञान के साथ इसका बल रहता है। बल तो बल है, एक पावर है। बल क्या है, एक पावर है, आप कहीं भी लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, आप फ्रिज में लगाओ तो ठंडा करेगा, पंखे पे के लगाओ तो हवा देगा, और गीजर से लगाओ तो गर्म पानी देगा, हीटर से लगाओ तो गर्मी देगा, पावर तो पावर है। ये मिस यूज हो रहा है, उस बल को डाइवर्जन करो, वहां से तो छोड़ देना, नुकसान को देखो, वहां नुकसान हो रहा है, ये दुख का कारण हो रहा है। हम हमारे हाथ से हमारे पैर पे कुल्हाड़ी नहीं चलाते, हमारे गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। पैर पर कुल्हाड़ी चलाते तो जिंदे रह जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हमारी भाव मरण चल रहा है, नुकसान को देखो। और वो विज्ञान करता है, ज्ञान विवेक करता है, तो बल अपनी दिशा को बदलता है, डायवर्जन होता है।
बल को चेंज करने में ज्ञान कारण
है, ज्ञान कारण है, ज्ञान ही साधन है, और कोई साधन नहीं है, ज्ञान ही साधन है। और ऐसे ज्ञान को विवेक कहते हैं कि जब आपके पास पूंजी है, पूंजी को कहां खर्चना वो आपको देखना है, ₹100 का दारू भी आता है और शास्त्र भी खरीद कर सकते हो। ₹100 तो ₹100 है, इसमें दारू की बोतल भी आएगी और शास्त्र भी दो आएगा, 50-50 रुपया वाला है। एक में अमृत भरा है, एक में जहर भरा है, पैसे तो पैसे हैं, आपको कहाँ लगाना है वो देख लीजिए। ऐसे बल तो है ही, बल नहीं है तो नहीं है, ऐसा बात नहीं है, है? है ये वर्तमान परिणमन में प्रकट है, वर्तमान पर्याय में प्रकट है वो, इसलिए हम कहते हैं निर्णय के साथ ज्ञान के साथ ज्ञान बल रहता है, ज्ञान साधन है। तो आप कुछ मत करिए, अपना मिसकंसेप्ट को बदल दीजिए। निर्णय बदल गया, आपका बल उसी दिशा में लगते रहेगा ऑटोमेटिकली। खैर नुकसान समझे और इसके पीछे नुकसान की भयंकरता को समझे। जीव का स्वभाव है नुकसान बर्दाश्त नहीं करने का, जीव का स्वभाव है, सभी जीव का ये स्वभाव है, नुकसान नहीं बर्दाश्त करेगा, उसको दुख नहीं चाहिए। ये तो ये नुकसान तो सुख दुख का है, सुख है वो लाभ है, दुख है तो नुकसान है। नहीं, वर्तमान में भी दुख रूप है और भविष्य में भी दुख रूप है।
वर्तमान में दुख भूमिका में तो लगे नहीं,
क्यों नहीं लगे? लगता है, अगर वर्तमान में जहां जब तक दुख नहीं लगेगा तब तक पुरुषार्थ अपनी दिशा बदलेगा नहीं। वर्तमान में ही दुख लगना चाहिए, ऐसी बात है। हम बुद्धिमान हैं या बुद्धि बिना के हैं, प्रश्न कोई पूछेंगे, क्या बुद्धि वाले हैं या बिना बुद्धि वाले हैं?
लगता तो ऐसा है बुद्धि नहीं है,
है?
लगता है कि बुद्धि नहीं है।
स्वीकार करोगे क्या? हाँ, कोई नहीं स्वीकार करेगा। तो वर्तमान में जिस परिणाम से आपको दुख हो रहा है वो तो आपकी बुद्धि में क्यों नहीं आता है, वो सवाल है। दूसरे के घर की तो बात नहीं कि समझ में नहीं आए, अपने घर की बात है, क्यों समझ में नहीं आए? तो सर्वदेव को तो मुमुक्षु जीव की परिभाषा ऐसे करते हैं, मुमुक्षु जीव यानी विचारवान जीव, ऐसा कहेंगे। जो मुमुक्षु नहीं है वो अविचारी है, ऐसा कहते हैं। अविचारी इसलिए कि अपने दुख का कारण वो खुद खड़ा करता है, इसलिए वो अविचारी है। तो मुमुक्षु जीव माने विचारवान जीव, जो अपने हित रहित को अच्छी तरह विचारता है, सोचता है, देखता है और इसका इलाज करता है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। हाँ, दुख को समझता नहीं है, मिसकॉन्सेप्ट है उस विषय में। सुख दुख को भी सुख समझता है कभी कभी, और कभी दुख को दुख समझता है तो भी सुख की गलत कल्पना है, तो उस तरह से वो चलेगा। जैसे हमको प्रतिकूलता आई तो दुख हो गया, किसी ने अपमान कर दिया तो दुख हो गया, तो मान में सुख मिलेगा, कोई तो प्रशंसा करेगा तो उसको सुख अच्छा सुख लगेगा। ये सब मिसकॉन्सेप्ट है। अनुकूलता आ जाएगी तो सुखी हो गया, प्रतिकूलता आई तो हम दुखी होंगे, ये गलत निश्चय है। मिसकॉन्सेप्ट मैंने गलत निश्चय है, तो निश्चय बल भी, निश्चय का बल निश्चय बल के साथ चलेगा, निश्चय के साथ चलेगा।
कैसे बोलते
हैं? इसलिए मुमुक्षु को सबसे पहले अपना निश्चय को बदलना है। निश्चय को नहीं बदले और बाहर की परिस्थिति में ग्रहण त्याग की माथापच्ची में चले जाए, छोड़ो इसको, इसका त्याग करो, इसका त्याग, वो गड़बड़ है।
निश्चय बदलने के लिए क्या प्रयास?
सही निश्चय करना, सही निश्चय करने के लिए क्या करना? सत्संग करना, घूम फिर के बात यहां आएगी। इसलिए तो पहला वचन वो लिखा है कि परमार्थ के सर्व साधन में परम साधन व सत्संग है। ये मुद्रा लेख है कृपालु देव का, क्या है? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क।
आत्मजागृति में हेडिंग डाला
है। हाँ, सत्संग सर्व का, सर्व सुख का मूल है, तो सत्संग के पाठ में लिखा है।
हर एक पन्ने में आता है
मालूम है, लेकिन वो कहां से लिया है? सत्संग का जो पाठ है ना 24 नंबर का मोक्ष माला में, उसमें वो वचन पड़ा है, वो चिरंजीव भाई ने वहां से लिया है। जो संपादक है ना, उन्होंने वहां से लिया है, हमने तो पढ़ लिया था, इधर है। कहां से लिया? तो देख लिया कि सत्संग के पाठ वहां से लिया है। सिलेक्शन करते हैं, संपादक का काम तो सिलेक्शन करने का होता है। क्या कहते हैं? कल्याण के, कल्याण में प्रतिबंध रूप जो जो कारण है उसका जीव को बार बार विचार करना चाहिए और वे कारणों को बार बार विचार करके मिटाना चाहिए, और ऐसे मार्ग को, इस प्रकार के मार्ग को अनुसरण किए बिना कल्याण की प्राप्ति होती नहीं। आत्मकल्याण की प्राप्ति इसके प्रतिबंधक कारण के सद्भाव में हो जाएगी, ये बात तो सामान्य तौर से भी स्वीकार नहीं हो सकेगी। कल्याण को रोकने वाले कारण है वो जहां तक मिटेंगे नहीं वहां तक कल्याण की प्राप्ति होना संभव नहीं है। अब कहते हैं कि ऐसे आत्मकल्याण में रोकने वाले प्रतिबंधक कारण जो अपने परिणाम है वो कौन कौन से हैं? ये प्रश्न यहाँ खड़ा होता है और कृपालु देव की यह पद्धति है कि उत्तर दे देते हैं, अगर आप प्रश्न करो या नहीं करो, वो कृपालु देव है। प्रश्न करने का कष्ट नहीं उठाओ तो नो, कोई बात नहीं, वो उत्तर दे देंगे।
बहुत कृपा देखते
हैं,
बहुत कृपा देखने लगते हैं।
कितनी कृपा है, है? बहुत कृपा है। इसकी कृपा को देखें तो इस कृपा के नीचे हम लोग दब जाते हैं, इतनी कृपा है। मौल विक्षेप और अज्ञान ये अनादि के जीव के तीन दोष हैं, ये प्रतिबंधक कारण ले लिया, प्रतिबंधक भाव। कारण मैंने कारण रूप परिणाम, कारण में कोई चीज नहीं लिया है, अपने परिणाम को लिया है। कि हमारे परिणाम कौन से ऐसे हैं जो हमारे आत्मकल्याण को प्रतिबंध करता है, माने रोकता है? तो कहते कि वो तीन है, और कब से है? वो अनादि से है। ये तीन कारण मल विक्षेप और अज्ञान ये अनादि के जीव के तीन दोष हैं, तीन प्रकार के भाव हैं और ये तीन दोष हैं। ज्ञानी पुरुष के वचन की प्राप्ति होने पर और इसका यथा योग्य विचार होने पर, वचन की प्राप्ति हो, वचन का संयोग हुआ, उसपे उस पर यथा योग्य विचार होना, ये हमारा कार्य है। वचन तो प्राप्त हो गया, अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति के सामने ज्ञान की प्रवृत्ति लिया है। ऐसे कहें तो ये तीन प्रकार के जो परिणाम हैं वो मल में मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा, विक्षेप मैंने क्षोभ, परिणाम का क्षोभ चंचलता, तो एक श्रद्धा एक चारित्र, और अज्ञान मैंने ज्ञान की विपरीतता, ये तीन अनादि के दोष हैं। वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र के दोष को लिया है। विपरीत श्रद्धा ज्ञान चारित्र है ये संसार का कारण है, और सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र है ये मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का इलाज है। तो सादी भाषा में लिया है, शास्त्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। आपके परिणाम में मल है, किसका दर्शन होगा, यह अनादि का दोष है, और इसके कारण से अज्ञान भी तो है ही, विपरीत ज्ञान तो है ही, वो ज्ञान का दोष है। और जो विक्षेप है, डिस्टर्बेंस है, परिणाम में जो डिस्टर्बेंस है, चंचलता है, ये चारित्र का दोष है। जब श्रद्धा ज्ञान का दोष होगा तो चारित्र का दोष तो होगा ही होगा। सबसे पहले अज्ञान का नाश कैसे हो इसकी बात किया है कि अगर जीव को ज्ञानी पुरुष के वचन की प्राप्ति होती है और उस पर यथा योग्य विचार वो करता है। यथा योग्य विचार माने क्या, कि मेरी वर्तमान योग्यता में वो कैसे लागू होता है और उसको हम कैसे लागू करें, ये इसका यथा योग्य विचार है। अगर ऐसा नहीं हो तो सुन लिया और निकाल दिया, सुन लिया और निकाल दिया, वो बात हो जाएगी। इसका यथा योग्य विचार होने से अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान मिट जाएगा। ज्ञानी पुरुष के वचन अनुसार हमारे प्रयोजनभूत वर्तमान योग्यता के प्रयोजनभूत विषय को अगर हम यथा योग्य रूप से उसका प्रयोग करेंगे, अमलीकरण करेंगे, अज्ञान की निवृत्ति हो ही जाएगी। नहीं हो वैसा नहीं बनेगा। इस तरह से दूसरे पोस्टकार्ड में और भी बातें हैं बाकी के दो दोष मिटाने के विषय में, और फिर बाकी का जो विषय है विस्तार से मैं समझ रहा हूँ।